Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
दूसरा फर्मा बरदार, तीसरा वफादार, नियम मर्यादा का पालन करने वाला। और बाबा कहते हैं आप विधायक हो, ला मेकर्स हो। बहुत मुरलिया में बाबा ने कहा आप ला मेकर्स हो, आप ला बनाने वाले हो। यू कैन नॉट टेक ला इन योर ओन हैंड्स, ला को अपने हाथ में मत लो, ला को ओबे करो। ओबीडियंट का क्या मतलब है? बाबा की आज्ञा का पालन करो। बाबा की आज्ञा का पालन का क्या मतलब है? कि जो लाज हैं ईश्वरी उनका पालन करो। ईश्वरी लाज क्या है? मीठा बोलो, हर एक से मिलके रहो, उनके प्रति कल्याणकारी भावना रखो। जो भी ये हैं ये लाज हैं, ईश्वरी लाज हैं। इसके आप ला मेकर हो, लोगों को ये लाज बताते हो। नई सृष्टि इन लाज पर टिकी हुई है, तो इन लाज को अगर तोड़ोगे तो ला ब्रेकर्स हो जाओगे, ला मेकर्स की बजाय। तो फिर वो जो है वो इसी उसको बाबा कहते हैं कि डोंट टेक ला इन योर ओन हैंड्स। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने इसको डंडा मारा। पुलिस को कहते हैं हाँ डंडा मारा तो सही मैंने, लेकिन इसलिए मारा कि इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने इसको डंडा मारा। तो इसका मतलब यह है वो भी अपराधी है, आप भी अपराधी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो अपराधी नहीं है, वो अपराधी है क्योंकि पहले उसने थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़ मारा इसलिए वो अपराधी है। आपने डंडा मारा, आप ज्यादा अपराधी हैं क्योंकि आपने डंडा मारा। तो ला को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर आप पहले पुलिस में रिपोर्ट करते कि ये मुझे मारता है, मेरी जान को इससे खतरा है, तब ला उसके खिलाफ काम करता। अब तो आप दोनों के खिलाफ काम करेगा क्योंकि आप भी क्रिमिनल हैं, वो भी क्रिमिनल है। तो ला को अपने हाथ में नहीं लेना, ये बाबा कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि विधि पूर्वक काम करो। विधि के ये सब मतलब है। सातवां है विनम्रता। जो भी कार्य करो विनम्रता से, नम्रता से, निरहंकारी, जिसको ये कहा गया निर्विकारी, निरहंकारी, निराकारी, नम्रता पूर्वक। ये हमारा अमोघ शास्त्र है, हमारी विजय का सबसे बड़ा शास्त्र ये है, झुक कर चलना। लोग समझते हैं रोब डालना और अपना भपके से वो करना, और हमारा जो दैवी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसका जो अमोघ शास्त्र है, जो अनकंकरेबल, इनविंसिबल, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसके आगे बड़े से बड़ा विरोधी भी झुक जाए, वो जो हमारा शास्त्र है वो है नम्रता। नम्रता कोई कम पावरफुल नहीं है। जो एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, उनके पास वो समझते हैं न्यूक्लियर वेपन्स जो है, आणविक शक्ति, ये बहुत बड़े शास्त्र हैं। वो बड़े जो देश हैं वो समझते हैं हमारे पास। हमारा सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? नम्रता। नम्रता इसको ये समझना चाहिए, ये हमारे सिद्धि का स्वरूप है एक प्रकार से। फिर आप इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। आएगा गुस्सा, आएगा प्रेस्टेज हमारा, हम समझेंगे हमारी इंसल्ट कर रहा है, इसको तो दो थप्पड़ मारो। ये समझता क्या है, ढाई देले का आदमी है और ऐसे बात करता है, अंदर से गुबार आएगा। लेकिन जब आपको ये आएगा नम्रता, नम्रता ये मेरा अमोघ शस्त्र है, इसकी जो प्राइड है, इसका जो अहंकार है, इसको मैंने किससे जीतना है? भाई वो कहते हैं वो गदा से लड़ा तो भीम ने गदा अपनी उठाई, उसने ये इस शास्त्र को लिया तो उसने उस शास्त्र को लिया, होता है ना, उससे विजय प्राप्त की। हमारा ये शास्त्र है, अस्त्र शास्त्र, ज्ञान का अस्त्र शास्त्र। तो विनम्रता में एक तो हमेशा ये बात रखो ध्यान में कि ये हमारा किस प्रकार से रहनी चाहिए, और इसमें सबसे पहले ये सोचो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, वर्ल्ड सर्वेंट हूं। आमतौर से ये कहा जाता है मैं कोई इसका नौकर हूं, इसके बाप का नौकर हूं, ये समझता क्या है? ऐसे कहते हैं नहीं, मैं हूं नौकर, इसका भी नौकर हूं, इसके बाप का भी नौकर हूं, सारी दुनिया का नौकर हूं मैं तो। वैसे ये कहते हैं ये आदमी क्या है, अरे नौकरी तो करता है वहां, ये इस तरह से किसी को टांट करते हैं लोग, ये क्या है नौकरी करता है, नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी पेशा। बाबा भी कहते हैं नौकरी से टोकरी उठाता है, नहीं हम तो है ही नौकर। यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, आई एम यूर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, पहले लोग ऐसे लिखते थे, अब लोगों में इतना ज्यादा प्राइड आ गया, योर फेथफुली लिखना शुरू कर दिया, फिर फेथफुली हटा के सिंसियरली लिखना शुरू कर दिया, फिर सिंसियरली भी हटा के आजकल सिर्फ योर्स लिखते हैं, फिर योर्स ट्रूली भी लिखना शुरू किया, फिर चूंकि ट्रूथ तो है नहीं तो मन में उनके आया योर्स ट्रूली क्यों लिखे जब हम है ही नहीं, तो ट्रूली भी हटा दिया। आप ट्रूली की बजाय आपने देखा होगा लेटर्स में क्या लिखते हैं, सिर्फ योर्स, बस योर्स भी सोचेंगे हम इनके हैं तो नहीं, फिर योर्स क्यों लिखते हैं। अभी उनको कोई शब्द और ख्याल में आया नहीं, जब आ गया तो योर्स भी हटा देंगे, कहेंगे माइन, योर्स भी नहीं। ये हालत है, हम वर्ल्ड सर्वेंट है। और बाबा कहते हैं मर जीवा, हम मरे पड़े, हम तो मरे पड़े। हम पिछला जो हमारा जो जीवन था, मैं बड़ा पैसे वाला हूं, अरे मैं भी कोई ऑफिस में आकर काम करता रहा हूं, गजरेट ऑफिसर रहा हूं, मेरे को कुछ मालूम नहीं क्या? यही आदमी जानता है क्या ज्यादा बात करता है? इसको ही सारी दुनिया का ज्ञान है क्या? मैं इसको सीधा कर दूंगा, ऐसे आदमी में ख्याल आता है। नहीं, मैं तो मरा पड़ा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो ये मरजीवा जब हम बन चुके, ये हमारे में भाव हो। और बाबा कहते हैं मैं तो फकीर हूं, बेगर टू प्रिंस, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो मेरे था वो शिव बाबा को दे दिया, मेरे पास कुछ रहा नहीं। तो बाबा कहते हैं बेगर टू प्रिंस, जितना आप बेगर बनोगे उतना प्रिंस बनोगे। बेगर का यहाँ ये मतलब नहीं दूसरों से कमंडर लेके उनसे गली गली में जाके उनको भौजी मैं तो बेगर हूं, मैं तो बेगर हूं, डालो कुछ इसमें, उसको बेगर नहीं। उससे तो बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, लेकिन मन का जो भाव है कि मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर हूं। तो ये भाव जब आएगा विनम्रता ठीक ढंग से आएगी। फिर बाबा कहते हैं विशेषता, हर एक आत्मा की विशेषता है, मेरा हर एक बच्चा विशेष है, उसका इस्तेमाल करो विश्व की सेवा के लिए, तो वो उससे आपका जो भविष्य है वो बहुत ऊंचा बन जाएगा। तो ये विशेषता, और अपनी भी विशेषता देखो, अपने में कमियां भी हैं कमजोरियां भी हैं, अगर उनको देखते रहोगे तो आप में हीन भाव आएगा, मैं तो नीच हूं दास हूं, जैसे भक्ति में सोचते रहे अपने विकारों को देखकर और यही सोचते रहे तो उठने का उनमें चांस ही नहीं रहा। लेकिन अपनी विशेषता देखो कि मैं जैसा भी हूं तैसा हूं, बाबा का हूं और मेरे में ये विशेषता तो है, इसको मैं काम लाऊं। तो अपनी भी विशेषता देखो और दूसरों की भी विशेषता देखो, दूसरों की भी कमियों कमजोरियों को मत देखो, क्योंकि आपका जीवन किस पर आधारित है, जैसा आप देखोगे वैसा आप बनोगे। ये आंख जो खिड़कियां हैं, वो कहते हैं जैसे आमतौर से कहते हैं कि इफ यू वॉन्ट टू रीच ए मैंस हार्ट यू कैन डू इट ओनली थ्रू हिज माउथ, अगर किसी आदमी के दिल तक आपने पहुंचना है तो उसके मुंह के रास्ते से पहुंच सकते हो। उसका मतलब क्या, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ खुश होगा तो आप उसके दिल तक पहुंच जाएंगे, ये लोगों का कहना है। लेकिन अगर आप कोई आत्मा में परिवर्तन चाहते हो तो जैसा आप देखते हो वैसे आप बनते हो। आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करो, अगर आप दूसरों की कमजोरियां देखेंगे, आज अगर आप पर आपको लगता है कि असर नहीं होगा, कल आपको महसूस होगा आप में कमजोरी आना शुरू, अरे ये भी तो ऐसा ही है, इसको इतने साल हो गए हैं 30 साल में, इसने क्या किया है, ये फला है, इसमें भी अभी अभी इसमें बहुत खराबियां हैं, ये है ये भी अभी बनाई कौन है संपूर्ण, तो आप में पुरुषार्थ की हीनता आना शुरू हो जाएगी, गिरावट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना भाई अपनी आंख में तो तिनका भी नहीं देखते और दूसरे की आंख का तिनका देखते हैं, अपनी आंख का शैतीर भी नहीं देखते, इस तरह से। तो ये इस तरह से अगर हम देखने लगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हमारे में बुराइयां ही प्रवेश करना शुरू कर देंगी। दीज आर द विंडोज थ्रू विच ऑल द इविल्स विल एंटर आवर माइंड, ये आंखों के द्वार से ये हमारे अंदर जो है वो घुसना शुरू कर देंगी बुराइयां, अगर आप दूसरों की बुराइयां देखोगे। इसको बाबा कहते हैं सी नो ईविल, दूसरों की बुराई मत देखो, उनकी विशेषता देखो, अप्रिशिएट करो कि ये इसमें बाबा ने इसको चुना है, देखो इसकी ये विशेषता है, इसको चुना है, देखो इसकी ये विशेषता है, तो आप में वो विशेषताएं आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा जो किसी की विशेषता है उससे ईर्ष्या ना करो, क्योंकि बाबा हर एक को जो ले आया है वो कारण ही उसका ये है, अगर सभी विशेषताएं आप में थी तो दूसरे को लाने की जरूरत ही नहीं थी। आप में कुछ विशेषताएं हैं इसलिए बाबा आपको लाया है। अब ये आदमी आर्किटेक्ट है, बाबा को बिल्डिंग्स भी बनवानी है, इसकी ये विशेषता है। आपकी ये विशेषता है कि आप धन से सहयोगी हो सकते हो, इसकी ये विशेषता है कि ये सेंटर पर स्थूल सेवा कर सकता है, इसकी ये विशेषता है कि ये दूसरों को ज्ञान दे सकता है। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। अगर आप ये समझोगे कि ये सारी विशेषताएं मेरे में ही हो, इसमें ये विशेषता क्यों है, तो जल जाओगे। ईर्ष्या से तो आदमी जल भून जाता है, जैसे बैंगन का भुर्ता बन जाता है, आपका भी भुर्ता बन जाएगा अगर वैसे सोचोगे तो। ईर्ष्या तो ऐसी चीज है। तो आठवां मैंने बताया विशेषता, नवा है विकास योजना। बाबा कहते हैं प्लान करो, विकास अपना जो विकास है डेवलपमेंट है उसकी योजना बनाओ। और योजनाएं तो बनाते हो, सेवा की योजना बनाते हो, लेकिन अपनी डेवलपमेंट अपना विकास कैसे हो, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो, प्लान यूर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप यूर सेल्फ, स्वयं आगे कैसे बढ़ना है, स्व उन्नति कैसे हो, उसकी भी योजना बनाओ। ऐसे नहीं हैपहैज़र्ड वे में काम नहीं करना, मकान बना लिया, कोई कमरा बना लिया, फिर कहा हो बाथरूम लैट्रिन कहाँ बनाए, अच्छा भाई इधर बना दो, फिर किचन कहाँ बनाए, वो उसके बाजू में बना दो। ये कोई इसको प्लान नहीं कहते, इज नॉट ए प्लान। पहले ऐसे बने हुए होते थे, जिस चीज की जरूरत पड़ी वो बना दी। पानी कहाँ से जाएगा, वो सारा गली में से नाली जा रही है, कोई प्लान नहीं, टाउन प्लानर का प्लान भी नहीं कि भाई ये पानी इधर से जाएगा। सारे मोहल्ले में गली में जाओ जो पुराने जमाने की थी, तो आप देखो क्या बुरी हालत थी। अभी भी किसी किसी शहर में पुराने हैं वो बने हुए, दे आर नॉट प्लान्ड सिटीज। तो वो अपने योजना की भी, अपने जो विकास है उसकी भी योजना बनाओ। जैसे कोई स्टूडेंट है, इतना टाइम मैंने फिजिक्स को देना है, इतना टाइम केमिस्ट्री को देना है, इतना टाइम मैंने मैथमेटिक्स को देना है, और मेरा ये सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, इसको मैंने ज्यादा टाइम देना है, और इतना मेरा कोर्स है उसके लिए इतना टाइम चाहिए। तो वो अपने खेल से, अपने गपशप से, अपनी दूसरी चीजों से निकाल के उसमें लगाएगा, योजना बनाएगा। स्टेशन है, इतनी दूर स्टेशन है, उसमें गाड़ी में भी जाओ तो ये जो टाइम है ये ट्रैफिक इस टाइम होता है, हैवी ट्रैफिक होता है, इतने बजे मैं निकलूंगा तब इतने बजे कहीं जाके पहुंचूंगा, और ये सामान मुझे चाहिए होगा रास्ते में, वहां पर इतने दिन रहूंगा, इतने वस्त्र चाहिए, ये चाहिए। और वहां जाके अगर कहे मेरे पास ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, वो तो लाया नहीं, वो तो वो किया नहीं, तो उसका योजना से काम नहीं रहा, तो ऐसे ही होगा। बाद में सोचेगा, उसी बजाय पहले सोच ले क्या क्या चाहिए होगा, सोचेगा तो फिर भी सही। तो ये कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड वे में हो, ऐसे ही अपनी भी प्लानिंग करो। मेरे में अभी तक काम का संस्कार गया नहीं, मैं इतने समय से योग का अभ्यास करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, ये कैसे जाएगा, इसके लिए मैं कोई प्लान करूं, क्या करूं, मुझ में ये क्रोध रहा हुआ है। मैं क्रोध से बोलता तो नहीं, लेकिन मन में गुस्सा तो आता है, बाहर से वचन तक नहीं आता, इतने में फर्क तो पड़ा, लेकिन मन में तो आता है। अब इसको मैं क्या करूं, उसमें मन में तो नहीं आता, लेकिन फलां दिन जो मैं सोया पड़ा था, मुझे स्वप्न आया, उसमें तो मैं किसी आदमी से लड़ रहा था। इसका मतलब यह है अंदर क्रोध सोया हुआ पड़ा है, अभी मरा नहीं है पूरी तरह से, इसका दफनाया नहीं गया है, इसकी हड्डियां पसलियां अभी तक हैं जिंदा, थोड़ा बहुत सांस चल रहा है इसका, तो ये क्रोध तो रहा हुआ है। इस तरीके से जो हमारे सारे जो भी अपने आप को टटोल के, उसके लिए प्लान बनाओ, किसी से मिलो, पूछो, जिन्होंने जिन्होंने उन मंजिलों को पार किया है, उन लड़ाइयों को, युद्ध में सफलता प्राप्त की है, कि मेरे को ये अगर ये रह गया, आज मेरा शरीर छूट गया, तो मैं सतयुग में कैसे जाऊंगा, उसमें जो शुद्ध पवित्र देवी देवता होंगे, मैं उनके साथ कैसे संबंध में आ सकता हूं, मेरे में तो ये मलेच्छों के संस्कार अभी तक हैं। अच्छी चीज कोई देखता हूं उसको खाने का मन करता है, दिया गुलाब जामुन एक, मन करता है एक और भी दे देते तो चलता था, तो ये मन में आ रहा है मिसाल के तौर पर। इसका मतलब यह है कि ये जो 2.5 इंच की जिबा है, अभी तक भी 5 फुट के आदमी ने जीता नहीं है इसको, ये अभी तक रही पड़ी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब हम अपने में समझते हैं ये कैसे जीते इसको, अगर योजना नहीं बनाओगे, टाइम कितना है, और बाबा तो कहते हैं आदमी के श्वास का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस टाइम में इसको मैंने कम से कम, चलो कुछ थोड़ा तो हमारे पास हो प्लान, कोई टाइम टेबल, कोई कैलेंडर, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, अगर नहीं होगा तो उसका नतीजा क्या होगा। तो इसको हम कहते हैं कि विकास योजना, अपनी विकास योजना बनाओ। अलबेलापन बाबा कहते हैं ना हो, बहुत सी मुरलियों में बाबा का ये है अलबेलापन ना हो। विकास योजना बनाने के लिए और उसको सफल करने के लिए जो मेंटल लेजीनेस है, अलबेलापन जो है, स्लैकनेस, वो नहीं होनी चाहिए। स्लॉथ जिसको कहा जाए, स्लोमनलीनेस, जिसमें आदमी की सुस्ती जिसको कहा जाता है भाई, आलस्य, अलबेलापन और आलस। योजना वो नहीं बनाता जो अलबेलापन है, अजी क्या ये तो हल्की सी बात है, ये तो हो ही जाएगा, अभी तो टाइम पड़ा है। तो ये जो टाल मटोल करना है वो अलबेलापन की जो ये नेचर मनुष्य की हो जाती है। बाबा ने बहुत कहा है कि पहले पहले अलबेलापन आएगा, अलबेलापन आलस को लाएगा, और आलस को ला के धीरे धीरे क्लास छोड़ा देगा। क्लास छोड़ा के जो संगठन से आपको बल मिलता था वो बल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे दुश्मन होता है, वो आपका जो ग्रुप है पहले उससे अलग ले जाएगा आपको, अलग ले जाके अकेला मोहल्ला, अकेली गली जहां अंधेरा होगा वहां आपको पकड़ के कहेगा, बच्चों आप बताओ उस दिन क्या कह रहे थे, आज तेरी खबर लेता हूं, हैं उस वक्त उसको कहेगा, पकड़ेगा। तो वो दुश्मन भी किसी को अकेला करता है, पहले उसके जो बल के साधन हो उनसे उनको हटा के पहले एक तरफ ले जाता है, आज बात कर मेरे से क्या कहता था तू, ऐसे बात करता है। तो बाबा कहता है माया की भी ये चाल है, माया क्या करती है, पहले आपको अलबेलापन करेगी, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई देर नहीं, अरे हम तो जिस वक्त करने पर आएंगे तो हमारे सामने बड़ी बड़ी चीजें, हम तो सिर्फ करने पर हमको आना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं भाई झूठे बहाने, अपने आप को तिफल तसल्लियां, अपने आप को एक झूठे तसल्ली करने के साधन वो करेंगे, और फिर उसको कहेंगे एक दिन क्लास में ना गए तो क्या हुआ, कल हम डबल मुरली पढ़ लेंगे, और दो मुरलियां क्या, हम तो बड़े फास्ट हैं, तीन मुरलियां भी इकट्ठी पढ़ लेंगे। बात तो पुरुषार्थ करने की है ना, सिर्फ सेंटर जाने की बात थोड़ी है, मुरली ही तो पढ़नी है ना, मुरली पढ़ लेंगे और योग लगा लेंगे, ऐसी क्या बात है, कहीं भी लगा सकते हैं, इतने पुराने आमायाम को क्या दिक्कत है। तो वो धीरे धीरे क्लास को छुड़ा देगा, संगठन को छुड़ा देगा, संगठन की अपनी शक्ति है। मुरली तो आपने कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास का संगठन का बल है ये कोई कम नहीं है, इसको मत भूलो। ये हमारा संगठन जो ब्राह्मण परिवार का है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगठन से आप छूटे तो समझो सूख जाओगे, यू विल बिकम ड्राइड और खत्म हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसलिए अलबेलापन को छोड़ो, आलस को छोड़ो, ये विकास योजना बनाओ, इसके लिए बाबा कहते हैं। तो 11th 11th बाबा कहते हैं व्यवस्था करो, हर एक चीज व्यवस्थित रूप से करो, ऑर्गेनाइज वे में करो, डिसऑर्गेनाइज वे में नहीं। गीता में कहा गया है जो ज्ञानी और योगी है, योग जो है वो योग किस चीज का नाम है, ज्ञान किस चीज का नाम है, मनुष्य की जो थॉट्स हैं वो व्यवस्थित हैं। ज्ञानी और योगी का ये लक्षण है। आप कभी किसी मीटिंग में भी बैठे हैं, लोगों की बात सुने, कई लोग जंप करते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, बात शुरू कर रहे हैं कुछ और चलेंगे, वो कहते हैं ना फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, वो चले जाते हैं, बात कर रहे हैं कुछ और वो अपने जो जिस के लिए मीटिंग हम कर रहे हैं, जिस बात को डिसाइड करना है, उस बात को छोड़ के बीच में कहेंगे आपको पता है उस आदमी का क्या हुआ, नहीं हमको तो नहीं पता है, कहेंगे वो जो डिस्कस करना है मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत जरूरी है, पहले ये सुन लो, वो बता देंगे, अच्छा भाई सुनाओ, सुनाने के बाद फिर दूसरी बात कहेंगे पहले चाय पी लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे, चलो चाय पी लो, फिर उसके बाद कहेंगे 15 मिनट गैप छोड़ दो, फिर इकट्ठे बैठ के जम के बात करेंगे। तो कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, फिर जब बात करेंगे वो कहीं से कहीं चले जाएंगे, कोई उनकी पटरी नहीं है जिस पर रेल चले उनकी, वो कोई राइट लेफ्ट ही नहीं है जिधर ही ले जाए। तो जो योगी और ज्ञानी होगा उसके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे, व्यवस्थित होगा जीवन उसका, व्यवस्थित होगा। एक तो उसका टाइम मैनेजमेंट होगा, सारी दिनचर्या जिसको हम कहते हैं, दिनचर्या माना क्या, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हमारा जो टाइम है वही तो लाइफ है, वो हमारा टाइम हमने किस पर स्पेंड करना है, योग पर कितना, ज्ञान पर कितना, सेवा पर कितना, रेस्ट पर कितना, भोजन पर कितना, ये सारा टाइम मैनेजमेंट व्यवस्था है टाइम की।